उतना उद्धार मिला भगवान के कृपा की सीमा बताई गई कि भगवान कितने दयालु है, कितने जीवन से प्रेम करते हैं, इसका जो पूरा पूरा प्रदर्शन है वे हम उतना उद्धार लीला में जान सकते हैं। देखा गया तो भगवान सभी जीवों से बराबर प्रेम करते हैं। जीव अपराध करे, कितने भी पाप करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रेम उनके लिए कम हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें इस बात का हमें पता चलता है कि भगवान का जीवन से कितना प्रेम है। लेकिन एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान के इस स्वरूप का पूरा पूरा प्रदर्शन होता है, और वह है उतना उद्धार लीला। भगवान ने इस लीला में अतिशय पापिनी क्रूर राक्षसी उतना का उद्धार किया, उसे धात्री गति दे दी। किसे धात्री गति दे दी? जो उनको मारने आए थे। अब विचार कीजिए कि आप कोई आपको मारने आए जान से हुए, तो क्या आप उसको घर पे अपनी माता बनाकर रखेंगे या पिता बनाकर रखेंगे? नहीं। लेकिन भगवान ऐसे विचित्र दयालु है, ऐसे अद्भुत है, उनको मारने आने वाली स्त्री को जो राक्षसी थी उसको भगवान ने अपनी माता का दर्जा दे दिया अपने निज धाम गोलोक वृंदावन में। तो इस अद्भुत लीला को हम सुनना प्रारंभ करते हैं, चर्चा करते हैं। दशम स्कंद के पांचवें अध्याय में नंद महाराज शुरुआत ऐसे होती है कि जब जैसे भगवान का जन्म होता है उसके बाद से ब्रज में एक अद्भुत प्रकार का ऐश्वर्य धन लक्ष्मी सब जगह सब कुछ बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि नंद महाराज चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान जैसे जहां पर भगवान हो और जहां पर भगवान की अच्छे से सेवा हो रही हो वहां पर धन ऐश्वर्य संपत्ति लक्ष्मी सब कुछ वहां पर रहता ही रहता है। तो यहां पर ऐसी स्थिति हो ब्रज में कि भगवान प्रकट हो गए, अपने आप धन बढ़ गया, अपने आप ऐश्वर्य बढ़ गया, सब लोग इतने प्रचंड मात्रा में धनी हो गए कि इससे जो ब्रजवासियों के जो राजा थे नंद महाराज उन्हें एक चिंता होगी। क्या चिंता होगी? अगर कंस को पता चल गया कि यहां पर इतना धन ऐश्वर्य बढ़ा है तो वो किसी कारणवश जोड़ देगा कि यहां पर कुछ कोई ऐसा दिव्य शक्ति प्रकट हुई है जिस कारण से ऐसा हो रहा है, तो कंस मार देगा किसको? मेरे लाला को, क्योंकि मेरे लाला की वजह से ऐसा हो रहा है। तो नंद महाराज इस चिंता के कारण नंद महाराज ने विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि वार्षिक जो कर हमें हर महीने देना होता है उसको क्यों ना मैं एक दो साल का कर जो टैक्स है वो पहले से चुका कर आ जाऊं। अगर मैं टैक्स पहले ही दे दूं तो कंस के लोग यहां पर आएंगे नहीं। किस कारण से कंस के लोग हमारे ब्रज में आएंगे मथुरा से टैक्स लेने के लिए? कि टैक्स टाइम पे दिया नहीं जा रहा है। लेकिन यदि मैं टैक्स पहले ही दे दूं कंस को तो वे लोग क्यों आएंगे? तो ये सोचकर नंद बाबा ने अपने गोकुल का सुरक्षा कुछ अच्छे तगड़े हट्टे कट्टे गोपों को सौंप कर नंद महाराज अपने कुछ साथियों को लेकर कर चुकाने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। अभी मथुरा में सिर्फ कंस को कर देना ही उनका एकमात्र कार्य नहीं था, उनकी इच्छा थी हृदय में कि वसुदेव जी से मिला जाए। वसुदेव जी उनके भाई थे, अब कैसे मिला जाए? कंस का इतना अत्याचार था, जहां पर राजा इस तरह से असुर हो तो वहां पर सज्जन व्यक्ति को छोटा छोटा कार्य भी बचकर संभल के करना चाहिए। अभी नंद महाराज विचार कर रहे थे कि वसुदेव जी पर इतना बड़ा संकट है, उसके इतने सारे पुत्रों को मार दिया जा रहा है, छह पुत्रों को तो मार दिया, सातवां नष्ट हो गया और आठवां आकाश में उड़ गए। तो महाराज नंद विचार कर रहे थे कि वसुदेव जी को अगर मैं ओपनली मिलूं, सबके सामने मिलूं, तो किसी तरह से ये कंस को तो पता चल ही जाएगा, और कंस क्या करेगा? वसुदेव का संबंध मुझसे जोड़कर वसुदेव के नाते मेरे पुत्रों को मार सकता है। तो इस कारण से नंद महाराज मथुरा में होते हुए भी, हृदय में इच्छा होते हुए भी, नंद महाराज वसुदेव जी को बाह्य रूप से नहीं मिल सकते, नहीं मिल पा रहे। और वसुदेव जी भी ये जानकर कि नंद बाबा आए हुए हैं, तो वसुदेव जी ने तो अपना पुत्र नंद बाबा के पास सौंपा था। अब विचार कीजिए कि जब भगवान का जन्माष्टमी के दिन जब भगवान वसुदेव जी ने गोकुल जाकर छोड़ दिया था, तो उस समय उस बात का पता किसी को नहीं था। नंद महाराज को पता नहीं था कि वसुदेव जी आए थे, उन्होंने अपने पुत्र को रखा और उनकी बेटी को ले गए, इस बात का पता किसी को नहीं था। और वसुदेव जी जानना चाहते थे कि मेरा पुत्र कैसा है। छह दिन बीत चुके थे, ये छठवें दिन की घटना है, जो पुत्रा उठा जी, ये तो पांचवा दिन चल रहा है। वसुदेव नंद महाराज के पांचवें दिन हुई थी, भगवान ने पुत्र का वध छठवें दिन किया था। तो अब वसुदेव के हृदय में भी हलचल हो रही थी कि अभी नंद महाराज आ गया है, लेकिन वो भी कंस के भय से वो भी मिलना नहीं चाहते थे नंद महाराज को खुले आओ। इसलिए जब रात हुई तो वसुदेव जी ने दाढ़ी मूछ एक्स्ट्रा लगाकर एक सीक्रेटरी वेशभूषा बनाकर एक साधारण मनुष्य जैसी, मंत्री थे वसुदेव जी, तो मंत्री थे और वे सभी लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने अपना वेशभूषा इस तरह से बना लिया कि कोई पूरी तरह से अपने को चद्दर से ढक लिया, ये जैसे भी उन्होंने अपने आप को ढक लिया और वे वहां पर चले गए नंद महाराज को मिलने के लिए। और नंद महाराज के पास मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कृष्ण का हालचाल पूछते हैं, और सब पूछने के बाद वसुदेव जी नंद महाराज से हाथ जोड़कर विनंती करते हैं कि हे नंद महाराज, आपने कंस को उसका वार्षिक कर दे दिया है और आप हमारे भी मुलाकात हो गई है, इसलिए अब आप कृपा करके शीघ्र अति शीघ्र इसी क्षण पुनः गोकुल के लिए निकल जाइए। तो नंद महाराज ने पूछा, इसी क्षण क्यों, कल सुबह निकल जाएंगे? बोले, नहीं, गोकुल में उत्पात हो रहा है। अब ये नंद महाराज ने सुना कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, तो उन्हें अपने लाला की चिंता हो गई, श्री कृष्ण की चिंता हो गई, और उस चिंता के कारण, उस आसक्ति के कारण नंद बाबा तुरंत निकल पड़े। तुरंत उन्होंने अपना सारा सामान बैलगाड़ी पर लाद दिया और नंद महाराज तुरंत निकल पड़े वसुदेव जी की बात मानकर। अब रास्ते में जब नंद महाराज चल रहे हैं गोकुल जाते समय, तो नंद महाराज विचार करकर यही कह रहे हैं कि नंदापति वचा शोये नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पाद उत्पाद आगम शंकिता। नंद महाराज जब चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा, मेरे पुत्र मर जाएगा, अगर वसुदेव जी अगर ये कह रहे हैं कि उत्पाद हो रहा है तो निश्चित उत्पाद हो रहा है, उनको वसुदेव जी की बात पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। हृदय हम भक्तों के जीवन में भी भगवान से आसक्ति होनी बहुत आवश्यक है। गृहस्थों को कहा जाता है कि उनके घर पे भगवान को रखा जाए, क्यों रखा जाए? उसका कारण ये है कि भगवान की रोज सेवा करते 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 भगवान से एक संबंध स्थापित होता है। घर यहाँ पर भी मंदिर में भगवान की रोज मंगल आरती अटेंड करके, मंगल आरती दर्शन आरती सब तरह रोज दिन भर की इतनी सारी आरती करके उनको प्रणाम करके गोविंद जी से आसक्ति हो जाती है, उनसे प्रेम हो जाता है। तो यदि हम पर संकट आता है, यदि हम लोग यहाँ पर मंदिर में नहीं रहते, किसी कारण लोग बाहर जाते हैं, तो भगवान का स्मरण नित्य रहता है, बाहर जाकर वो स्मरण करते हैं गोविंद जी की, या ऊपर से संकट आ जाए तब तो निश्चित रूप से हमारा स्मरण बढ़ता है। तो इसलिए विशेष करके घर गृहस्थी के लोगों को कहा जाता है कि हमें घर पे अच्छा निग्रह होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान उनके, जब भगवान किसी गृहस्थी घर पर रहते हैं तो एक परिवार का सदस्य बनकर रहते हैं, तो उनकी सेवा करते करते सारे परिवार की उनमें आसक्ति हो जाती है, और संकट के समय वे वो उनके अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकता है, लेकिन घर पे यदि विग्रह है ही नहीं तो आसक्ति कैसे होगी। इसलिए विग्रह होना घर पे गृहस्थ करके बहुत आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ पर सबसे ज्यादा संकट आता है। ब्रह्मचारी लोग मंदिर में है भगवान की सुरक्षा में, सुबह मंगल आरती दर्शन आरती सब तरह कथा होती रहती, सुरक्षा सुरक्षित है। लेकिन घर गृहस्थी वाले तो माया से लड़ते रहते हैं, संसार के बेचारे जॉब करने जाते थे पता नहीं हाँ कैसे कैसे डिजिटल लोग होते हैं जो उन पर राजनीति करते हैं, ये करते हैं, संकट में डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही यदि वो भक्त भगवान का स्मरण करे, हमेशा भगवान का स्मरण करे, तो भगवान उसकी रक्षा निश्चित करते हैं। तो इस तरह से वसुदेव जी के कहने पर नंद महाराज गोकुल के लिए निकल पड़े। और अब कंस ने क्या किया था, जब कंस ने अपने मंत्रियों को बताया था कि जो देवी प्रकट हुई थी उसने कहा था कि कहीं ना कहीं तो मेरा काल जन्म लिया है, तो सारे मंत्री कंस के कह रहे हैं कि महाराज ये तो बहुत आसान है, एक काम करते जितने से आपका जो शत्रु होगा वह 10-12 दिन के अंतराल का होगा, तो 10 दिन के अंदर से ब्रज मंडल में जितने सारे बच्चे पैदा हुए सबको मार देते हैं। अभी उनके मंत्री कौन थे कंस के, अघासुर बकासुर जितने सारे असुर थे सारे कंस के मंत्री थे, और सबकी ये सलाह कि महाराज मार दो सबको, सबको मार दो। और कूदना अपने से सामने आती है कि महाराज मैं स्पेशलिस्ट हूं इसमें, बच्चों को मारने में मेरा स्पेशल, मैंने PhD की है, मेरा स्पेशलाइजेशन उसी में है, ये सारे असुर तो अपने अपने इसमें है लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन के बच्चों को मारते हैं, तो आपका कार्य मैं आसानी से कर सकती हूँ। तो जब कंस की सेवा करने हेतु कूदना अपने से सामने आती है, कहती कि महाराज मैं मारूंगी आपके काल को। कंसे न प्रतिहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चचार निगनंती पुरग्राम व्रजादिशु। तो यह पूतना नाम की जो राक्षस पूतना वैसे जाति है, एक प्रकार की जाति है, लेकिन यहाँ पर पूतना उस व्यक्ति को लिया जा रहा है। पूतना नाम की एक बहुत बड़ी राक्षसी थी और उसका काम था बच्चों को मारना। खाना क्या था, बच्चों का मांस खाना, पीती क्या थी, बच्चों का खून पीती थी, यही उसका खाना था, यही उसका आहार था। तो जब कंस ने इस तरह से उसको आदेश दे दिया तब वो तुरंत निशाचरी पूतना निकल पड़ी गोकुल के लिए। एकदम भयानक विकराल दिखने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई, और गोकुल में आकर उसने देखा कि अगर इस वेश में मैं जाऊंगी गोकुल में तो सारे लोग भयभीत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरह से मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना क्या कर रही थी, पूतना का कार्य क्या था, पूतना ब्रज में बच्चों को मारते हुए निकल रहे थे। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या वृंदावन में पूतना मार रही थी, बोले नहीं, सुखदेव गोस्वामी का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो मारने के लिए निकल गए थे, मार नहीं रही थी। पाणिनि जी कहते हैं कि एक सूत्र है वर्तमान सामिप्य वर्तमान वधवा, अर्थात अगर बारिश होने वाली है, घने बादल छाए हुए हैं और हमें पता बारिश होने वाली है तो हम क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, तो भविष्य में जो होने वाली घटना उसको वर्तमान में बता देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि पूतना मारने के लिए निकली है, अर्थात पूतना ये कार्य कर रही है, लेकिन क्या ब्रज में भगवान की होते पूतना मार रही है, नहीं, ब्रज मंडल के किसी भी पुत्र को किसी भी बच्चे को पूतना मार नहीं सकी। उसने मारा था लेकिन मथुरा की कुछ बच्चों को मारा था, ब्रज मंडल में एक भी बच्चे को पूतना मार नहीं पाए। जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब ये विचार सुनते हैं महाराज परीक्षित की पूतना बच्चों को मारने के लिए आई, श्री कृष्ण को मारेगी, तो ये सुनकर महाराज परीक्षित एकदम असरज में पड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं और एकदम चिंता में पड़ जाते हैं कि बाप रे भगवान को मारा जाएगा। अब देखिए महाराज परीक्षित तो जानते हैं सब कुछ कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब कुछ है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो बाल लीला का वर्णन कर रहे थे उसमें वो इतने डूब गए महाराज परीक्षित कि वो भी एकदम लीला पर पहुंच गए कि बाप रे पूतना आ रही है और अभी मार डालेगी कृष्ण को। तो इस भाव में वो डर गए और कहे गुरुदेव ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान लाला की रक्षा होनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की इस बात पर हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो महाराज परीक्षित, नयत्र श्रवणा देनी ये रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भरतु यातु धान्य से तत्र हि। जिस स्थान पर भगवान के गुण रूप लीला अधिकार श्रवण कीर्तन नहीं होता उसी स्थान पर पूतना जैसे राक्षसियों का बल कार्य करता है, उनका जो पोटेंसी हो वहां पर कार्य करती है। लेकिन जहां पर भगवान के गुण रूप लीला आदि का श्रवण कीर्तन नित्य हो रहा है वहां पर ऐसे असुरों का कोई असर नहीं होता। जैसे हम लोग मंदिरों में ये भक्त लोग, अगर हम लोग भगवान के भक्तों पर ऐसा चीजों का असर नहीं होता, ये व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे व्यक्तिगत अनुभव इस बात का है कि मैं नारायण कवच रोज धारण करता हूँ, नारायण कवच जो विधि है उससे रोज अपने शरीर में धारण करता हूँ, तो उससे पता चल जाता है कि कोई अगर कोई नेगेटिव चीज है या उस पर कोई अगर आपको प्रहार करना चाहती है तो उससे लोग कुछ नहीं कर सकते। नारायण कवच रक्षा करता है, भगवान के नाम गुण लीला सब रक्षा करता है, इसका व्यक्तिगत अनुभूति है। अगर आप लोग भी ऐसे धारण करेंगे तो आपको भी इसकी भगवान के शक्ति का पता चलेगा कि किस तरह से भगवान का नाम रक्षा करता है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि जहां पर श्रवण आदि होता है वहां पर तो छोड़े, यहां पर तो साक्षात भगवान विराजमान है, वहां पर तो पूतना क्या कर सकती है, पूतना कुछ नहीं करेगी। जिस तरह से अग्नि में पतंगे नष्ट हो जाते हैं उसी तरह से ये पूतना भी ब्रज में आके नष्ट हो जाएगी। और जब ये महाराज परीक्षित सुनते हैं तब कहते हैं कि हाँ अब तो ठीक है, अब आगे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार आकाश मार्ग से विचरण करने वाली तथा रूप बनाने में समर्थ पूतना गोकुल में एक सुंदरी स्त्री का वेश धारण करके गोकुल में प्रवेश करती है, और ये ऐसी सुंदरी स्त्री का वेश धारण करती है कि ब्रजवासी लोग जो भगवान के नित्य परिकर है वे उससे आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए कि महाराज परीक्षित पूछते हैं कि ये पूतना इतनी निर्लज है कि ये किसी के घर में ऐसी घुस जाएगी, ब्रज में ऐसी बिना परमिशन के आ जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जी हाँ ये ऐसी निर्लज है, निशाचर्य स्वेच्छाचारिणी है कि इसको किसी की परमिशन नहीं लगती, बस इसका कार्य ही है पूतना जहां जहां जाती है बच्चों को मारने का काम करती है। तो पूतना ब्रज में घूम रही थी और घूम घूम कर हर एक बच्चे को देख रही थी और कह रही थी कि हाँ इसको 10वें नंबर मारूंगी, इसको 8वें मारूंगी, इसके 9वें मारूंगी, इसको 7वें मारूंगी। निर्णय नहीं कर पा रही थी पूतना कि अब इसको मारना है, हर एक को नंबर देते हुए आगे बढ़ रही थी, इसको बाद में मारूंगी, इसको बाद में मारूंगी। वास्तव में भगवान उसको वो कार्य करने नहीं दे रहे थे, भगवान पूतना को अपने योग माया के माध्यम से भगवान किसी तरह से पूतना को अपने पास ला रहे थे। इसलिए इतने सारे बच्चों को सामने देखते हुए भी स्पेशलिस्ट डेथ स्पेशलिस्ट उनको मार नहीं रही थी। तो पूतना के इस तरह से घूमते फिरते इतनी सुंदर जब ब्रजवासियों के बीच में आई तो ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सुखदेव गोस्वामी से भी रहा नहीं गया, सुखदेव गोस्वामी भी उसकी सुंदरता का वर्णन करने लग गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केश बंधन व्यति शक्त मल्लिका, कि पूतला के बालों में मालती के पुष्प लगे हुए थे, उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और उसकी कमर पतली थी, और जैसे माँ यशोदा ने जिस तरह के कपड़े पहने थे वैसे ही वस्त्र पूतना ने धारण किए हुए थे। उसकी अब प्रश्न उठ सकता है कि एक शुद्ध गोस्वामी जैसा विरक्त चूड़ामणि, एक पूतना जैसी राक्षसी का जो सुंदर वेश बनाकर आई उसका वर्णन क्यों कर रहा है, प्रश्न उठ सकता है। एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी को क्या करना है, वो भी राक्षसी का, अब उसका उत्तर यह है कि हमारे आचार्यगण कहते हैं कि उतना भगवान की लीला का एक पात्र है और वो भगवान की मां बनने वाली है आगे जाके। तो शुकदेव गोस्वामी इस बात को जानते थे कि वो तो भगवान की मां बनी हुई, इसलिए उसके उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। एक भक्त होने वाले भविष्य में होने वाली भक्त की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि मां बनने वाली है कृष्ण की। इसलिए इस बात को स्मरण करते हुए शुकदेव गोस्वामी बड़ी अच्छे से उसका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि पुतला की मुस्कुराहट बनावटी थी तथा उसके हृदय में भाव पूर्ण था, बाहर से बड़ी सुंदर एक माँ जैसे लग रही थी। अरे मेरा लाला, हर एक बच्चे को जब रास्ते में जा रहे थे हर एक बच्चे से ऐसा मधुर और ऐसा प्रेम भरा व्यवहार कर रहे थे कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन देवी आ गई। और हाथ में कमल लिए जब ये लक्ष्मी जी घूम रही थी, उनके ब्रजवासी लोग विचार कर रहे थे कि कौन है। तो आपस में ब्रज गोपियां विचार करती है कि ये निश्चित रूप से ये लक्ष्मी है। अच्छा कैसे, अरे देखो तो सही, इसके हाथ कितनी ऐसी सुंदर स्त्री तुमने कभी देखी है, ये निश्चित रूप से कोई ऐसी देवी होगी, पार्वती जी हो सकती है। अरे बोली दूसरी को भी नहीं दे सकी, ये पार्वती जी क्यों आएगी यहाँ, ये लक्ष्मी जी है, निश्चित रूप से यहाँ पे नारायण ने देव जन्म लिया होगा और इसलिए उसको खोजते हुए लक्ष्मी जी घूम रही है। तो वो पूतला पूछ रहे थे कि ये नंद बाबा का घर किधर है। बोले नंद बाबा का घर, हाँ उस तरफ है। और आपस में लोग चर्चा कर रहे थे, वाह अगर ये लाला को लाला के पास चली जाएगी, उसको मात्र देख लेगी तब तो लाला निहाल हो जाएगा। तो इस तरह से आपस में ब्रज गोपियां चर्चा करते हुए उसकी सराहना कर रही थी, उसको वेलकम कर रही थी कि आइए। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या ये जो ब्रजवासी लोग हैं भगवान के परिकर है, एक असुर राक्षसी आई हुई थी, उसको समझ नहीं पा रहे कि राक्षसी है, कि ब्रजवासी लोग भगवान के प्रेम भक्त है, सब कुछ सारी सिद्धियां उनको प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है उनको, लेकिन क्या उनको एक पूतना दिखाई नहीं दी। देखिए सज्जन व्यक्ति को सारी चीजें अच्छी लगती है। सज्जन व्यक्ति होती है, हरीशुरी जी है एक पुष्टिमार्ग के आचार्य है, वे इस संबंध में कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को हमेशा सारी चीजें अच्छी लगती है। वे लोग सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी के भी दोषों में गुणों में दोष नहीं देखते, अगर दोष दिख रहा है तो उसमें भी उस व्यक्ति के अच्छे गुण दिखेंगे उनमें। तो इस तरह से ब्रजवासी लोग जो है वो पूतना के असुरी प्रभु जो राक्षसी थी उसको उनको दिखाई नहीं दे रहा था। और पूतना ब्रज में गोकुल में प्रवेश करती है। अब पूतना शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि पूतना क्या है बच्चों के लिए, पर पूतना बच्चों के लिए एक महाग्रह के समान है। ऐसा ग्रह आप विचार कीजिए कि बच्चों को मारना, छोटे छोटे बच्चे जन्मजात छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे कोमल कोमल हाथ होते हैं पैर होता है, एक साधारण कर्मी व्यक्ति भी अगर बच्चे को देखता है तो उसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है। अरे कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई थी एक क्षण के लिए, जब वसुदेव जी ने अपने प्रथम पुत्र को लेकर आके सौंप दिया था कि आप कंस आप ले लीजिए इसको मार दीजिए, तब कंस ने जब उसको देख लिया अपने प्रथम पुत्र को तो कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई थी। लेकिन इस असुरी लोगों ने उसकी मति को बिगाड़ दिया। तो कंस के हृदय में भी कंस जैसे असुर के हृदय में भी एक चेतना हो जाती है कि भैया इसको छोटे बच्चों को माफ कर देना चाहिए। अभी भगवान अभी प्रश्न उठ सकता है कि अब भगवान का क्या रिएक्शन था, जब पूतना नंद बाबा के घर पर आई तो भगवान क्या कर रहे थे, छोटे से 6 दिन के भगवान। तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अब कई कारण हो सकते, हमारे आचार्यों ने 21 कारण दिए, अलग अलग आचार्यों के टीकाओं से 21 कारण बताए गए हैं कि क्या क्यों पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं कि मल्लवाचार्य इस सूत्र में लिखते हैं कि पुतला एक स्त्री थी जो अविद्या का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो भगवान सोच रहे थे कि यदि मैं इस समय अपने आपके खुली रखूं तो यह अविद्या मेरे सामने आकर नष्ट हो जाएगी, तो मुझे पुतना का उद्धार करना है, इसका इसको मातृ गति देनी तो कैसे दूंगा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो भगवान दूसरा कारण आचार्य बताते हैं कि यह पवित्र बच्चों को मार डालने वाली है, सबसे जगत का कृत्य करने वाली है, ऐसे असुरी का मैं दर्शन नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तीसरा कारण ये बताते हैं कि इस जन्म में तो इसने कोई भक्ति नहीं की है, जरा आके मन करके देख लो कि इसने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति की है मेरी की नहीं। इसलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान उसके पूर्व जन्म में देखने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो कुछ आचार्यों का मानना है, भगवान कहते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी राक्षसी का या किसी पापिनी का दूध नहीं पिया है, जब भी मैंने दूध पिया है तो माताओं का पिया है, गौओं का पिया है, ये पापिनी राक्षसी का दूध मुझे पहली बार पीना पड़ रहा है। तो जिस तरह से लोग चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं या दवाई कड़ी दवाई होती है उसको दवाई खानी पड़ती है, तो आँख बंद करके खा लेते हैं, कान बंद करके खा लेते हैं, कड़ी ना लगे, उस तरह से भगवान विचार कर रहे थे कि अब इसके दूध को पीना पड़ ही रहा है तो आँख बंद करके पीना चाहिए, आँख खुल के ये कड़वी चीज मुझे पीने की कोई इच्छा नहीं है। फिर एक बार आचार्य लिखते हैं कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है कि वे अपने माँ के सामने खूब खेलते हैं, और यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो तुरंत डर जाते हैं और तुरंत अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान जब पूतना को देख लेगा, अपरिचित स्त्री को देख लिए, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस तरह से ऐसे तो कई आचार्य ने कई सारी उत्प्रेक्षाएं की है भक्त कवियों ने, इसमें से चार पांच हमने चर्चा की। तो बाल लीला बिहारी श्री कृष्ण का वर्णन सुखदेव गोस्वामी पूतना की दृष्टि से कर रहे हैं कि पूतना हमको देखकर क्या लगे, पूतना भगवान को देखकर क्या सोच रही है। अभी हमने जाना कि भगवान पूतना को देखकर क्या सोच रहे थे, अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पूतना भगवान को देखकर क्या विचार कर रही है। पूतना सोच रही है कि अरे ये तो क्या है, छोटा सा बालक ही तो है, ये मेरा क्या कर सकता है, इसको तो बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। वास्तव में पूतना समझ नहीं रही थी, भगवान ने अपने तेज को छिपा कर रखा हुआ था, भगवान ने अपना जितना तेज है उसको छिपा कर रखा था। कैसे छिपा कर रखा था, जिस तरह से अगर राख है, जैसे अग्नि के ऊपर राख हो जाती है ना, तो अग्नि प्रकट नहीं होगी, दिखती नहीं है, लेकिन यदि उसमें धधकती हुई अग्नि है और कोई उसको छू दे तो उसको मरना निश्चित है। तो भगवान के इस तेज को कि भगवान है इसको नहीं समझ रहे हैं। जैसे अनजान में कोई कुंडली बनाकर कोई सांप है, कोई सांप बैठा हुआ है, अगर उसको कोई रस्सी समझ कर उठा ले, आप विचार कीजिए कि अंधेरा है और आपको रस्सी की आवश्यकता है, और आप ऐसे रस्सी पड़ी हुई है उसको उठा लेंगे, यदि वो सांप निकल जाए तब आप विचार कीजिए क्या स्थिति हो जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे कुंडली बनाकर बैठे हुए सांप को अनजाने में व्यक्ति रस्सी समझ कर उठा ले, वैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया। वास्तव में अब होने वाला यह है कि भगवान को तो गोद में उठा लिया, अब भगवान को जिसने धारण कर लिया है तो उसके सदगति में कोई संदेह है। जब वसुदेव जी भगवान को गोकुल छोड़कर जब लौट रहे थे, तब सारे दरवाजे बंद हो गए, अपने आप बंद हो गए, सारे फाटक पिटक सब लोग सब कुछ अपने आप बंद हो गया, और जब वसुदेव जी कारागृह में पहुंचे और उस बेटी को नीचे रख दिया था, उस समय वसुदेव जी ने सब देखा कि सब कुछ बंद हो गया, बस मेरे हाथ की बेड़ी बंद नहीं रही। क्या कारण? हाथ की बेड़ी अपने आप आ गई, जब अपने आप खुल गई थी तो अपने आप लगनी भी चाहिए। तो बस कुछ आचार्य लोग टीका लिखते हैं, अरे जिसने भगवान को एक बार धारण कर लिया उसको कैसे कोई बंधन, उसको कैसे कोई बंधन में डाल सकता है। तो यहां पर पूतना ने भगवान को उठा लिया तो अब उसका संसार बंधन समाप्त होना ही है। ये प्रसंग है पूतना उद्धार का, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। शुकदेव गोस्वामी अपने मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। वेदव्यास जी ने इतने सारे इतिहास पुराणों की रचना की और उसमें उसको विस्तार कर दिया, अपने शिष्यों को बांट दिया, लेकिन वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को जब उन्होंने रचना की तो उसको बांटने वाला कोई योग्य व्यक्ति दिख नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दीजिए मेरे पुत्र के रूप में, जो आपके गुण रूप लीला आदि का वर्णन कर सके भागवत के रूप में। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। लेकिन शुकदेव गोस्वामी 16 साल के उम्र बाहर नहीं आ रहे, इसलिए वेदव्यास को भगवान को द्वारका जाना पड़ा, भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान ने आश्वासन दिया कि हे शुकदेव गोस्वामी बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, तब जाके शुकदेव गोस्वामी बाहर आए। और आए तो आए और सीधे निकल गए, संन्यास ग्रहण, संन्यास ले लिया उन्होंने सीधा और घूम रहे थे घरों में। अरे वेदव्यास जी सोच रहे थे कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये आएगा भागवत पढ़ेगा मुझसे और ये आगे जाके भागवत का प्रचार करेगा, यहाँ पर हो रहा उल्टा। यहाँ पर आया है लड़का और सीधा संन्यास लेके ब्रह्मानंद में घूम रहा है। तो वेदव्यास जी को चिंता हो गई, लेकिन उन्हें भागवत पर विश्वास था। उन्होंने दो श्लोकों को अपने शिष्यों के माध्यम से गाते हुए भेज दिया, कहा कि दो श्लोकों को गाओ। कौन से दो श्लोक थे वो? वरहा तिलम नटवर बप्पू वाला और अहो बखियम स्तन काल कूटम जिगांसया पाय यदप्य साधनी लेबे गतिम धात्र चितामतोन्यम कंबा दयालु शरणम रजे। इन दो श्लोकों को वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और ये शिष्य गा रहे थे। और शुकदेव गोस्वामी ने इन जब भगवान की इस कथा को सुना कि अरे जो मारने आई थी उसको मातृ गति दे दी, और भगवान के सौंदर्य का वर्णन जब सुना तो शुकदेव गोस्वामी ने अपने ब्रह्मानंद को त्याग कर अपने पिता वेदव्यास जी से भागवत सुनने के लिए तैयार हुए, तुरंत लौट पड़े। उसी तरह से हमें भी यही कार्य करना है, भगवान के गुण रूप लीला आदि को कहना है। संसार में लोग फंसे हुए हैं, अपने भौतिक कार्य फंसे हुए हैं, कुछ लोग किसी अलग अलग पंथ में फंसे हुए हैं, कोई अलग अलग मानसिकता वाले कोई श्रद्धालु है, कोई किसी की मानसिकता क्या है, लेकिन हमारा कार्य यह होना चाहिए कि हमें भगवान के गुण रूप लीला आदि का वर्णन करना है। इतना करने मात्र से जो संसारिक लोग हैं, ये जो अलग अलग पंथ फंसे हुए लोग हैं, जब भगवान के गुणों को सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनसे आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए भागवत सबको पढ़ना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि नित्यम भागवत सेवा, भागवत की नित्य सेवा करनी चाहिए। कैसे भागवत की नित्य सेवा होगी? तीन प्रकार से होती है, उसका श्रवण करके, उसका अध्ययन करके और उसका कीर्तन करके। तो हम लोगों का कार्य है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश जो है उसका पूरा करने का यही तरीका है। प्रभुपाद जी ने इस पर जोर दिया है कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को श्रीमद् भागवत में और अन्य शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए और सब जगह प्रचार करना चाहिए। इससे भगवान के गुण रूप लीला आदि का जब संसारिक भक्त जीव सुनते हैं तो उनकी जो उनका जो संसार बंधन है वो कट जाता है और वो श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब तक वो भगवान के यश को, भगवान की कीर्ति को नहीं सुनेंगे तब तक उनका संसार बंधन कैसे कटेगा? इसलिए हम भक्तों का एक प्रथम कर्तव्य है कि हमें भगवान के गुण रूप लीला आदि को श्रवण, अध्ययन और कीर्तन करना चाहिए, अर्थात भागवत पढ़ना चाहिए। और उसका कीर्तन करने मात्र से बहुत सारे लोग भगवान के भक्त बन सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी जैसे महान व्यक्ति जो भगवान के जो भगवान के परिकर है, वो ब्रह्मानंद में घूम रहे थे और वो आकर्षित हो गए। ब्रह्मानंद जो सांसारिक आनंद से कोटि गुना अधिक आनंद ब्रह्मानंद में है, वहां से शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण लीला की तरफ आकर्षित हो गए। तो ये सांसारिक जीव है उनकी तो बात क्या है, संसार में जो जीव है जो तुच्छ तुच्छ भोगों में सुख प्राप्त करने के लिए सुख प्राप्त मिलता है उनको जो आनंद है तुच्छ आनंद है, लेकिन वे जब भगवान के गुणों को सुनेंगे, वे जब आकर्षित होंगे तब उनको जो आनंद मिलेगा वो अद्भुत है। इसलिए भगवान के कीर्ति और यश को सर्वत्र गाना चाहिए। देखिए पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए वृंदावन में, गोकुल में राक्षसी थी, लेकिन पूतना में इतने सारे अवगुण होने के बावजूद भी पूतना में दो गुण थे। कौन से दो गुण थे? एक गुण था कि वो भगवान के गोकुल में आए थे अर्थात ब्रजमंडल में आए थे, और दूसरा पूतना ने माता का वेश धारण किया था। दो अद्भुत बातें हैं, एक तो मान लीजिए यहां से वृंदावन जाता है तो स्वाभाविक है जो वृंदावन पहुंचेगा कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन वहां पर सबसे राधे राधे सुनेगा, जगह जगह पर लाउड स्पीकर पे कथाएं चलती रहती है, परिक्रमा भी कर लेगा तो भी सब जगह हरे कृष्णा चलता रहता है, सब जगह वातावरण ऐसा भरे वहां पर आजकल ट्रैफिक गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हो, लेकिन फिर उसमें भी वहां पर सब जगह लिखा राधे देखने जाएंगे सब जगह राधे राधे लिखा होता है, सारे भक्त लोगों के हाथ में जप माला होती है, सब कंठी माला बने हुए होते हैं। इस तरह से कोई भगवान में श्रद्धा न रखने वाला व्यक्ति भी जब ब्रजमंडल में पहुंचता है तो उसको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और ऐसे भक्तों को देख कर उसका चित्त बदल जाता है। तो यहां पर पूतना भगवान के गोकुल में आई थी और वो भी क्या बनकर आई थी, माँ का वेश धारण करके आई थी। अभी उसको एक वेश धारण करना था तो उसने वेश बदलते हुए जब उसको वेश धारण करना था उसने देखा कि यार ब्रजवासी लोग जो ब्रज की माताओं का जो वेश है वो मुझे धारण करना चाहिए। तो जैसे यशोदा माँ का जो वेश था ना, जैसे वात्सल्यमय गोपियों का जो वेश था वैसा ही वेश पूतना ने धारण कर लिया। तो भगवान ने पूतना के इन गुणों को देखा, भगवान ने उसके जितने सारे अनंत कोटि जन्मों के जो पाप राशि है उसको नहीं देखा, भगवान ने यही देखा कि ये मेरे पास आई है, माँ का वेश बनाकर आई है, अगर माँ का वेश बनाकर आई है तो चलो इसको माँ बना ही लेते हैं। तो ये है भगवान की सहज दया और अद्भुत स्वभाव, ऐसा है भगवान का स्वभाव। तो हम भक्तों को भी भगवान के स्वभाव से थोड़ी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा ये ग्रहण करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को समर्पित है, सोना माला जप कर रहा है, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो यद्यपि उसमें थोड़े दोष दिख जाए तो उसके दोषों को नहीं देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। क्यों? कि भगवान भी किसी भी एक पूतना जैसे राक्षसी के दोषों को नहीं देखते, भगवान नहीं देखते। पूतना जैसे राक्षसी जिसका काम था मात्र बच्चों को मारना मर्डर करना, ऐसे राक्षसी के क्रूर कार्य को भगवान नहीं देख रहे, और भगवान उसके अच्छे साइड को देख रहे हैं। क्यों? मेरे पास आई है माँ का वेश बनाकर मुझे दूध पिलाना चाहते हैं, तो भगवान ये देख रहे हैं। उसी तरह से हम भक्तों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भक्त है, जो वैष्णव है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, मंगल आरती करते हैं, सोलह माला जप करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, यदि उनमें थोड़ी त्रुटि हो भी जाए तो उनमें नहीं देखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उनके गुणों को देखते हुए, अगर कोई करना ही है तो उसके लिए किसी वैष्णव में निंदा करने से अच्छा उसके उसके दोष देखने से अच्छा कि भगवान से प्रार्थना की जाए उस व्यक्ति को कि प्रभु आप उसके हृदय में रहते हैं, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप उसके हृदय में रहते हैं, हम सबके हृदय में आपका निवास स्थान है, उसके हृदय में भी आप रहते हैं, तो आप उस कृपा करके उस वैष्णव को सदबुद्धि दें ताकि वो अच्छा कार्य करें। ये दया होनी चाहिए। तो भगवान की स्वभाव स्वभाव से पता चलता है, भगवान का स्वभाव इस लीला से पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। लेकिन भगवान चर आचर सभी के, चर आचर सभी के आत्मा है, अर्थात चर और अक्षर इन दोनों स्थानों में भगवान निवास करता है। चर का अर्थ क्या है, कि चलने वाले प्राणी है जैसे मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि, अचर क्या है पहाड़ है पेड़ है इत्यादि। तो भगवान इन चर अचर दोनों में निवास करता है और भगवान इतना ही सिर्फ निवास ही नहीं करते, भगवान प्रत्येक जीव के मन में कब कब कौन सा संकल्प उठ रहा है उसकी भगवान को भली भांति धारणा है, भगवान को सब मालूम है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान मतलब इतना सब जानते हुए भी, ये जानते हुए कि कुटना एक राक्षसी है, भगवान ने उसका प्रतिकार नहीं किया, वो आ रही है कुटना राक्षसी आ रही है, भगवान जान रहे थे क्या करने आई कुटना मुझे मारने आई है, लेकिन भगवान ने प्रतिकार नहीं किया उसका, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसका और इंतजार कर देखा वो मुझे उठाएगी या मुझे अपना रूप मिलाएगी। तो सब कुछ जानने वाले भगवान भी चराचर, सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पर भगवान को चराचर आत्मा कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ जानते हुए भगवान पूर्णिमा का स्वागत किए एक तरह से कि आओ तुम माता बनने आई हो तो मैं तुम्हें माता बना दूंगा। देखिए भगवान के प्रेम को समझना चाहिए, भगवान का प्रेम हम जीवों के प्रति कैसा है। सर्वज्ञ भगवान का प्रेम सभी जीवों के प्रति ऐसा है जैसे जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेती है, नवजात शिशु है छोटे से बच्चे को गोद में दूध पिलाती है, तो दूध पीते पीते कभी माता के स्तनों को बच्चा काटता है, माँ को तकलीफ होती है लेकिन माँ उसको सहन कर लेती है। यदि कोई बच्चा है यदि कोई पुत्र है यदि उसकी गलती हो जाए तो माता पिता उसको क्षमा कर देते हैं, उसके उसके बाहर के लोगों की दृष्टि से भले उसने अपराध किया हो कोई पाप किया हो लेकिन अपने माता पिता कभी उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख कितना बड़ा अपराध कर लीजिए, एक बड़े से बड़े डाकू की माँ भी अपने पुत्र के प्रति स्नेह का भाव रखती है, उसके नजरों में कभी उसका बेटा गलत नहीं है, एक प्रेम इतना रहता है, स्नेह इतना रहता है, भले गलत कार्य में क्यों ना है लेकिन जो उसकी आसक्ति है उसका जो प्रेम है अपने पुत्र के तरफ वो प्रेम कम नहीं होता है। और उसी तरह से श्री कृष्ण ने किसी भी प्रकार जब पुतला भगवान को मारने के लिए आए थे और भगवान को उठा लिया उसके गोद में तो भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्यों, क्योंकि भगवान का स्नेह था उस जीव के प्रति, भगवान विचार कर रहे थे कि अरे ये जीव ये जो पूतना है जर कितने समय से इस शरीर में फंसी हुई है, जन्म मृत्यु के चक्कर में उसको छुड़ाने का समय आ गया है, अब मेरे पास आ गई अब मैं मेरे से वापिस नहीं जाएगी। और लग, अब पूतना नाटक ऐसे कर रही थी, इतना भयानक नाटक कर रही थी कि अरे मेरा लाला अरे मेरा लालू अरे ऐसा सब इस तरह से गोद में ले रही थी और कहते थे कि अरे तूने मेरे गोद से क्यों जन्म ले लिया, तू यहाँ पर कहाँ पैदा हो गया, अरे तुझे तो मेरा पुत्र बनना चाहिए था, अरे मेरा कितना सौभाग्य होता। तो इस तरह से उतना अपने भावों को व्यक्त कर रही थी। अब वहाँ पर रोहिणी और यशोदा थी, अब रोहिणी और यशोदा पास में खड़ी थी और विचार कर रही थी कि विश्वनाथ चतुर्वेदी लिखते हैं कि रोहिणी यशोदा सोच रही थी कि इसकी वास्तविक माँ मैं हूँ कि ये है, एक विचित्र प्रकार का वात्सल्य प्रदर्शन पूतना कर रही थी। और ऐसा वात्सल्य का प्रदर्शन देखकर यशोदा तक को भ्रमित हो गया और यशोदा विचार करने लगी कि वाह कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज मेरे लाला के दर्शन करने के लिए ये यहाँ पर आई है और इसने तो गोद में उठा लिया, हे प्रभु किसी तरह से ये दूध पिला दे मेरे बेटे, तुमने देखी है ब्रज में इस तरह का भाव, इस तरह से दूध पिला दे तो मेरा बेटा निहाल हो जाएगा। अब बाद में पता चलेगा कि उन कि क्या सोच रहे थे यशो, लेकिन इस तरह से यशोदा का भाव था। तो माता पिता का स्वभाव, जिस तरह से माता पिता का स्वभाव होता है वैसे ही भगवान का जीवों के प्रति प्रेम होता है। और एक उदाहरण श्रील रूपा जी देते हैं कि मान लीजिए कि अगर पुत्र, अगर पुत्र छोटा सा बालक है और अगर पेशाब टट्टी कर देता है तो उसका परिसर गीला हो जाता है, तो माँ उसको अच्छे से रखती है, मतलब उसको तुरंत उसका डायपर वेपर जो भी चेंज करती है, खुद भले उसको खुद को अगर भले गिलने में सोना पड़े तो सो जाएगी। कितना कष्ट होता है माता पिता को अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करने में। हम बच्चे लोग भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने कितना कष्ट उठाया है। छोटे से बच्चे रहते हैं, बोलने की क्षमता नहीं होती है, तीन महीने का तो हिलते नहीं है, सारे टट्टी बिट्टी सब वही करते हैं, बेड वही करते हैं, तो साफ करो। थोड़े बड़े हो जाते हैं, छः सात महीने में इधर उधर डोलने लगता है, तो धीरे धीरे करके चलने फिरने लगते हैं। तो माता पिता अपना काम भी संभालते हैं और फिर उसकी उसकी सेवा भी करते हैं, उसको ध्यान देते हैं कहीं 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 उसको चोट ना लग जाए, ये ना कर जाए। 24 घंटे माता पिता उसके पीछे रहते हैं। उसके बाद थोड़ा स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज में भेजने के लिए धन लगता है, फ्री में तो है नहीं, यूके यूएसए तो है नहीं, ये सब फ्री में हो जाए। तो यह कितना कष्ट होता है, माता पिता बड़े कष्ट के साथ बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन हम लोग उनके उपकार में भूल जाते हैं, हम लोग माता पिता के उपकार में भूल जाते हैं। लेकिन माता पिता का स्नेह बच्चे में, भले बच्चा उनको माने अथवा नहीं माने, माता पिता का जो स्नेह है वो बच्चे में रहता ही रहता है। उसी तरह से भगवान की कोई भक्ति करता है अथवा नहीं करता है, भगवान का जो जीवों के प्रति जो जो दया है, जो प्रेम है, वो रहता ही है। जैसे उदाहरण है महाराज जी देते हैं कि एक छोटा सा घर पे यदि दो बच्चे हैं और अगर उसके पिता कोई मिठाई लेकर घर पे आए और अपने बच्चे को दे दे और बच्चा वो मिठाई लेकर सबसे पहले वो मिठाई उठाकर अपने पिता की ही मुंह में डाल दे कि पिताजी आप लीजिए, तो कितनी उस पिता कितना गद्दार हो जाएगा कि मैंने अपने पुत्र के लिए मिठाई लाई है और वो बेटा मुझे वो मिठाई खिला रहा है, तो पिता और दे और उस पैसे के दूसरा पुत्र उनका है और पुत्र बस वो मिठाई लाकर लेके निकल गया। तो दोनों प्रकार के बेटों से पिता का स्नेह तो बराबर है, एक ने लौटा दिया तो पिता गदगद हो गया और दूसरे नहीं लौटा रहे तो भी कोई बात नहीं, ले ले उसको ही, उसको भी देते हैं माता पिता। तो इस तरह से भगवान हम सबको देते रहते हैं, हम उस उनकी भक्ति करें, लोग उनकी भक्ति करें अथवा नहीं करें, भगवान का जो जीव के प्रति जो स्वभाव प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, उसकी दया का वर्णन किया गया है। तो कूदना जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि जिस तरह से मखमल के कोश अगर अंदर तलवार होती है तो बाहर से भले मखमल लगे लेकिन अंदर से तलवार की जो धार है वो बड़ी खतरनाक होती है, उसी तरह से पूतना का जो हृदय था बाहर से तो एकदम सुंदर वात्सल्य वही माँ का रूप धारण करके रखी थी, लेकिन अंदर से वो कैसी थी, एक तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थी। तो इस तरह शुक्र गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी तीक्ष्ण हृदय वाली पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठाकर उसको अपना स्तन देना प्रारंभ कर दिया, अपना स्तन देना प्रारंभ कर दिया, दूध देना प्रारंभ कर दिया। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान ने वास्तव में पुत्र का दूध पिया? नहीं, भगवान भी दूध पीने का नाटक कर रहे थे। जब पूतना ने भगवान को अपना स्तन दिया तो भगवान ने छोटे छोटे हाथों से उस स्तनों को पकड़ा और भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। कुछ आचार्यगण ये कहते हैं कि भगवान ने शिवजी को बुला लिया कि ये शिवजी ये सब जहर पीने में आप एक्सपर्ट हैं, तो ये आपका कार्य है, तो आप आइए और आप अपना विष पी लीजिए, मुझे तो भाई दूध पीने की आदत है। तो भगवान शिव जी का कुछ आचार्य लोग ऐसे टीका में लिखते हैं, भगवान ने शिव जी को बुला लिया कि शिव जी आप, आपका आपका भोजन है आप कर लीजिए। तो भगवान अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको, उसके स्तनों को दबाकर उसका दूध पीना प्रारंभ कर दिया, नाटक करना चालू कर दिया। अब पूतना जब भगवान के इस तेज पहले बात तो तेज को समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब वो गोद में आ गया और पकड़ने लगा और भगवान जब उसके प्राण सारी शक्ति निकाल रहे थे, तो पूतना को आभास हो गया कि बाप रे ये तो कोई महाशक्ति है, महापराक्रमी बालक है। तब पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे रे नीच, छोड़ दे मुझे छोड़ दे। अब भगवान हमारे ऐसे हैं, एक बार किसी को पकड़ लेते तो छोड़ने की बात नहीं करते। और भगवान ने जब दोनों हाथों से पूतना को पकड़ लिया है, तब काय को छोड़े, तब पूतना को इतनी एक असहनीय पीड़ा हो गई थी कि उस पीड़ा, उस असहनीय पीड़ा को लेकर पूतना घर से बाहर निकली और आकाश में उड़ गई। और आकाश में उड़कर पूतना इतनी ऊंची चली गई और छोटा सा बालक लटक रहा था, उसको स्तनों पर लटक रहा था, उसको बालक छोटे से कृष्ण ने नीचे देख लिया और कृष्ण नीचे देख के और डर गया और कृष्ण ने उसके स्तनों को और जोर से पकड़ लिया। अब कृष्ण ने जब उसके स्तनों को पकड़ लिया तब पूतना बस मरी गई थी। और धीरे धीरे करके पूतना का सारा प्राण जब निकल गया, तब भगवान ने विचार किया अभी प्लेन उड़ तो गया, अभी लैंड कराना पड़ेगा और ये ब्रज में लैंड करेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो भगवान ने उसका जो पूतना का विशाल देह था वो कंस के बगीचे में गिरा दिया, इतना बड़ा विशाल देह कंस के बगीचे में गिर गया। पूतना कितनी बड़ी थी, छह कोस अर्थात 12 माइल लंबी, इतनी बड़ी पूतना थी, वो कंस के बगीचे में गिर गई। अब भगवान उसके शरीर पर खेल रहे हैं, अपने सब तरह के से हाथ पैर लगा कर खेल रहे हैं। तो उनको खेलने दीजिए पूरे दिन भर, कल भगवान आगे कल गोपियां आकर उनको उठाएंगी, तो आज एक दिन के लिए उनको खेलने दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।